हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूह अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक क्रमांक 3। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्य कलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि अष्टांग योग में जब शुरुआत में व्यक्ति कर्म करता है तो उसके बाद जब उसका मन शांत हो जाता है यम नियमों का पालन करके आसन वगैरह को सिद्ध करके, तो फिर उसके बाद वो उन कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता, अपितु उन भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और मन को भगवान में निविष्ट करता है। तात्पर्य देखेंगे, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। अधम अवस्था मतलब जिस अवस्था में हम अपने आप को पूरी तरह से शरीर मानते हैं, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानते हैं, तो ये चेतना की एकदम निम्न कोटि की अवस्था है और योग की पद्धति के द्वारा इस चेतना को शुद्ध करके आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ लेता है वहां तक पहुंचा जा सकता है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारुरुक्षु अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। योगारुरुक्षु का मतलब है जिसने योग करना प्रारंभ किया है, जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना शुरू किया है उसको योगारुरुक्षु यानी कि योग में ऊपर चढ़ने की अवस्था बताई जाएगी। और योगारूढ़ का मतलब जो योग में पूरी तरह से आगे पारंगत हो गया है, अब उसकी इंद्रियां भगवान को छोड़कर और किसी कार्य में नहीं लगती हैं। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। यानी कि व्यक्ति यम और नियम का पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य और बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे यम होते हैं। यम का मतलब होता है जिन कार्यों को नहीं करना है और नियम का मतलब होता है जिन कार्यों को करना है। तो ऐसे बहुत सारे जब वो कार्य करता है, बहुत सारे नियमों का पालन करता है, फिर वो आसन लगाने का अभ्यास करता है। जब आसन लगाने का अभ्यास उसका सिद्ध हो जाता है तब वो प्राणायाम करता है, प्राणों के द्वारा अपने प्राणों को संयमित करने के द्वारा अपने मन को संयमित करता है, संतुलित करता है, और फिर वो प्रत्याहार करता है, अपनी इंद्रियों को बाहर के विषयों से अंदर की ओर खींचता है और फिर ध्यान करने की स्थिति में आता है। जब वो ध्यान की स्थिति में आता है तो फिर ये बाह्य क्रियाओं को करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन तो आप देख सकते हैं यम, फिर नियम, यम नियम, उसके बाद आसन, उसके बाद धार, उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर ध्यान, यानी छठे स्टेज पे हम ध्यान शुरू करते हैं अष्टांग योग की पद्धति के द्वारा। शुरुआत में इस प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं, यानी कि जो मन की चंचलता है भोगों की तरफ जाने की ये शांत हो जाती है अष्टांग योग के इन नियमों का पालन करके। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, तो अष्टांग योग के अभ्यास के द्वारा मन से ये इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं का निर्मूलन हो जाता है, ये इच्छाएं रहती नहीं है, रहने जाती हैं। लेकिन अब देखिएगा लास्ट सेक्शन में प्रभुपाद बहुत अच्छा बता रहे हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। भक्ति में साधन और साध्य ये एक ही है। साधन क्या है? भक्ति स्वरूप सिद्ध भक्ति हमारा साधन है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि ये हम अभी कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से, जिसमें हमारी चेतना दूषित है लेकिन कार्य पूरी तरह से पवित्र है। और जब हम सिद्ध हो जाएंगे, हमारी चेतना पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा इन कार्यों को करके, तो यही कार्य हमारे जीवन बन जाएंगे। यही भागवत श्रवण, यही भगवत गीता का श्रवण, भगवान का प्रसाद ग्रहण, भगवान के दर्शन, भगवान का कीर्तन, भगवान को प्रणाम, यही सब जीवन के लिए अमृत हो जाएगा। इसके बिना जीवन हम जी ही नहीं सकेंगे, ये स्थिति आ जाएगी। तो व्यक्ति को कब तक जप करना चाहिए? जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आप जप करना बंद ना कर सकें। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक आप जप करना बंद ना कर सकें, ऐसी स्थिति ना आ जाए, तब तक हमें जप करते रहना चाहिए नियमित रूप से। श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि हम अपने जप में गुणवत्ता कैसे प्राप्त करें, जप में गुणवत्ता कैसे प्राप्त करें। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब आपको ये लगने लगे कि 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, जब इतना आनंद मिलने लग जाए नाम में, तब आप समझें कि आपके जप में गुणवत्ता है। तो यानी कि इस समय हमें नियमों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे लिए संख्या को पूरा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ साथ हमें ध्यान से सुनना भी चाहिए, तो इससे बहुत तीव्र प्रगति होती है। और धीरे धीरे करके क्रमशः हम ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसमें भगवान के ही चरण में हमारा मन जाने लगता है। लेकिन प्रारंभ की अवस्था में भी अपनी क्रियाओं को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। प्रायः हम सब साधकों के लिए संभव नहीं है कि दिन भर बैठ के हम जप करें, और आचार्य लोग इसको ऐसा बोलते भी नहीं है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, हमने पहले भी चर्चा किया था कि हम अपनी क्रियाओं को अपनी चेतना के द्वारा करते हैं। तो जब हम भगवान के लिए कुछ खाना बना रहे हैं तो हम उसको खाते नहीं हैं, तो ये क्या है? ये भगवान का स्मरण है कि ये खाना भगवान के लिए बन रहा है, भगवान पहले से चखेंगे उसके बाद मैं उसको स्वीकार करूंगा। ऐसे ही अगर आप प्रचार के लिए जा रहे हैं तो मन में आपके यही आएगा कि मैं भगवान के लिए कुछ बोलूंगा जाकर के, तो स्वभावतः भगवान का स्मरण कर हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रभुपाद प्रैक्टिकल समाधि। अलग से कोई नियम आसन ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो अपने आप ही नाम पे ध्यान जाएगा, भगवान के बारे में सुनेंगे तो अपने आप ही भगवान का स्मरण होगा। और इसको बार 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 करते रहने से फिर मन में यही सारे विचार हमेशा घूमते रहते हैं, तो अब अपने आप ही स्वतः ही भगवान का स्मरण होता है, जो कि योग का परम उद्देश्य है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण हमारे सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। पर इंटरेस्टिंग है कि व्यक्ति शुरुआत से ही कर्म को बंद कर देता है। वो कर्म जो जगत में बंधन का कारण है, वही कर्म जगत से मुक्ति का कारण बन जाते हैं। तो भक्त को अपने कर्म बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि भगवान यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, जो नव साधक कर्म करता है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, वही एक महान भक्त भी करते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन केवल उनके अनुभव में परिवर्तन हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, हमने श्लोक से ये सीखा कि अष्टांग योग में साधन होता है और उस समय के बाद उस साधन की उपयोगिता नहीं रहती है जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। लेकिन भक्ति योग में साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं है, और भक्ति योग ही हमारे लिए स्वीकारनीय है, क्योंकि भक्ति योग ही शाश्वत तरीका है जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सके। भक्ति का अर्थ है भगवान और भक्त के बीच में शाश्वत संबंध। और भगवान भी गीता में सभी योग पद्धतियों को अनुमोदित करते हैं, लेकिन अनुदो का भगवान गीता में स्पष्ट बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानति, यहां की भक्ति के द्वारा ही उनको हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? यावन यश शास्त्र तत्वतः, जैसे भगवान है वैसे जान सकते हैं। और आप इस श्लोक को देखेंगे, आगे हम पढ़ते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान इतनी सारी बातें बताएंगे अष्टांग योग के बारे में, लेकिन अंत में यही बताएंगे, योगी नाम के सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, कि जितने भी योगी हैं उन सभीों में जो व्यक्ति लगातार मेरा स्मरण करता है श्रद्धा से प्रेम से, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो भले ही भगवान अन्य योग पद्धतियों को अनुमोदित कर रहे हैं, लेकिन भगवान का जो एम्फेसिस है, ये जो मुख्य कह सकते हैं पुष्टिकरण जो है, भगवान वो भक्ति योग को ही दे रहे हैं, और भक्ति के द्वारा ही भगवान समझा रहे हैं कि हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को भगवद गीता का सार समझते हुए भक्ति योग को ही स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण।